بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ریڈیو تہران ہے, اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز.
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متر, زہرہ زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں. شروتاؤں, آج قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت کرمانک 14 اور 15 کی تلاوت کر کے آج کے کارکرم کی شوبھا بڑھائی ہے قاری قاسم رضی نے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج والله بصير بالعباد. صدق الله العلي العظيم.
اللہ کے نام سے جو اتین کرپاشیل اور دیوان ہے، لوگوں کے لیے پتنیوں، سنتانوں، سونے چاندی سے بٹورے ہوئے دھن، اچھے گھوڑوں، مویشیوں تتھا کھیتیوں سے پریم کو اچھا دکھایا گیا ہے۔ یہ سب سانسارک جیون کی نشور وستویں ہیں اور اللہ کے پاس اچھا پرتیفل ہے۔ ہی پیغمبر، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس سے اچھی وستوؤں کی خبر دیتا ہوں۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے پاس ایسے باغ ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہاں وہ سدیو رہیں گے۔ ان کی پتنیاں ہوں گی اور اللہ کی پرسنتا ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستوں، کاریکرم میں آپ کا سواگت ہے۔ آج شکروار ہے، ستمبر کی 9، سفر کی 12 اور شہری ور ماہ کی 18 تاریخ۔ سبھا میں پہلے آپ وشو سماچار سنیں گے، پھر راجنیتک چرچا پیش کی جائے گی۔ راجنیتک چرچا کے اپرانت آپ کا من پسند کاریکرم پیش کیا جائے گا پتر سنسار، اور ہماری سبھا کا انتیم کاریکرم ہوگا وگیان کی ڈگر۔ تو شوتاؤ، یہ تھی ہمارے کاریکرموں کی روپ ریکھا۔ اب کچھ ہی چھڑوں میں ریڈیو تہران سے وشو سماچار پیش کیے جائیں گے۔ یہ تہران ہے، اب آپ وشو سماچار سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آج کے پرمکھ سماچاروں کا سارانش۔ ایران کی تھل سینا نے اپ گریڈ ورژن میزائل کا سفل پریکشن کیا ہے۔ اتری کوریا نے سوئم کو پرمانو شکتی گھوشت کر دیا۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین کو بھیجے جانے والے ہتھیار آتنکوادیوں کے ہاتھ لگ رہے ہیں۔ کانگریس کی بھارت جوڑوں پد یاترا کو اپار سمرتھن مل رہا ہے۔ اور اب آپ وستار سے وشو سماچار سنیے۔ اسلامی گڑتنت ایران کی تھل سینا نے میزائل کے ایک اپ گریڈ ورژن کا سفلتاپورن پریکشن کیا ہے۔ مدھ ایران کے اصفہان پرانت میں ایرانی سشستر بلوں دوارا جاری سینیہ ابھیاس اپنے انتیم چرن میں پہنچ چکا ہے۔ اس دوران ایران کی تھل سینا نے شفق نامک آدھنک میزائل کے اپ گریڈ ورژن کا سفلتا پوروک پریکشن کیا۔ وہیں سینیہ ابھیاس کے دوسرے دن ایران کی سینا کے پرمکھ میجر جنرل باقری وہاں پر موجود تھے۔ اس سینیہ ابھیاس میں تھل سینا کے کچھ ہیلی کاپٹروں نے ہیلی بورن آپریشن میں حصہ لیا۔ جنرل باقری نے آپریشن کی پرشنسا کرتے ہوئے کہا کہ ہیلی بورن یونٹ نے ابھیاس میں ان کی اچتم استر کی لڑاکو تتپرتا کو ستیاپت کیا ہے۔ سینیہ ابھیاس میں ایران کی اپنی تکنیک سے وکست مہاجر 6 ڈرون نے نگرانی گتیویدھیوں کو انجام دیا۔ محبین آل رسول نامک ایران کے سنی مسلمانوں کے ایک کارواں نے پوتر نگر کربلا کے لیے روانگی شروع کر دی ہے. اس قافلے میں پورے ایران سے سنی مسلمانوں کے سبھی ورگوں سے سمبندھت سموہ شامل ہیں. اس سمے عراق کا پوتر نگر نجف اور کربلا شردھالوؤں سے بھرا ہوا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھیوں کے اربعین ارتھات چہلم کے موقع پر کربلا پہنچنے والوں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے. اربعین ارتھات شوق کے 40 دن مسلم پرمپراؤں میں سے ایک ہے. اربعین پرتھوی پر سب سے بڑے دھارمک کارکرموں میں سے ایک ہے, جس میں لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ عراق کے پوتر نگر کربلا پہنچتے ہیں. یہ وہی شہر ہے جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوئے تھے. سعودی عرب میں ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں ایک مہیلا کو بڑی ہی بے رحمی سے پیٹا جا رہا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی امانوی کاری ہوتا ہے, وشیش کر مہیلاؤں کے اتپیڑن کی کوئی خبر سامنے آتی ہے, تو راشٹر سنگھ سہیت دنیا کے ادھکانش دیش اس پر اپنی کڑی پرتکریائیں دینے لگتے ہیں. لیکن اگر ایسی کوئی خبر کسی پیسے والے دیش وشیش کر سعودی عرب سے آتی ہے, تو اس پر پرتکریا دینے کے بجائے اس کے گناہوں کو ڈھکنے کے پریاس انہی دیشوں اور انہی سنگٹھنوں کی اور سے کیے جانے لگتے ہیں. اس بیچ حال ہی میں سعودی عرب کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جو کافی پریشان کرنے والا ہے. اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے کچھ پرشوں کا سموہ لڑکیوں اور مہیلاؤں کو ان کے بالوں سے پکڑ کر کھینچ رہا ہے. وہ انہیں بہت ہی بے دردی سے پیٹ رہے ہیں. اس ویڈیو میں جو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ سعودی عرب کے سرکشا ادھیکاری اور پولیس آفیسرز لگ رہے ہیں جو خاکی یونیفارم پہنے ہوئے ہیں. ویڈیو اسیر پرانت میں استھت ایک اناتھالیہ کا بتایا جا رہا ہے. اتر کوریا نے خود کو پرمانو شکتی گھوشت کرتے ہوئے نیا قانون پارت کیا ہے. اس قانون میں کہا گیا ہے کہ وہ آتم رکشا میں کسی بھی دیش دوارا اتپن خطروں کا مقابلہ کرنے کے لیے پرمانو حملہ شروع کر سکتا ہے. اتری کوریا کے اس نئے قانون میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اب وہ پرمانو ہتھیار سمپن راشٹر ہے. اتری کوریا کے نیتا کم جونگ ان نے کہا ہے کہ اسے کبھی بدلا نہیں جا سکے گا. انہوں نے پرن لیا کہ ہمارا دیش کبھی بھی اپنے پرمانو ہتھیاروں کو نہیں چھوڑے گا. انہوں نے کہا کہ پرمانو ہتھیار وہین کرنے کو لے کر کوئی بھی بات چیت اب آگے نہیں ہوگی. کم جونگ نے اس قانون کو پارت کیے جانے کی جم کر پرشنسا کی. اس نئے قانون میں اتری کوریا سے کہا گیا ہے کہ اسے اپنی سرکشا کے لیے پرمانو ہتھیاروں کے پہلے استعمال کا ادھیکار پراپت ہے. روس کا کہنا ہے کہ یوکرین کو بھیجے جانے والے ہتھیار آتنکوادی کاروائیوں کے لیے پریوگ ہو رہے ہیں. اسپوتنک سماچار ایجنسی کے انوسار روس کے گرہ منتری نے کہا ہے کہ پشچم کی اور سے جو ہتھیار یوکرین کو بھیجے جا رہے ہیں وہ آتنکوادیوں کے ہاتھوں لگ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یوکرین بھیجے جانے والے ادھکانش ہتھیار یورپ میں سنیوجت اپرادھ کرنے والے گٹوں اور آتنکوادیوں کو مل رہے ہیں. یوروپیہ سنگھ اور امریکہ اب تک یوکرین کے لیے کروڑوں ڈالر کے ہتھیار بھیج چکے ہیں, جن میں سے ادھکانش اپنے گنتویہ تک نہیں پہنچ پائے. روس کے انوسار وہ ہتھیار جو بلیک مارکیٹ کے مادھیم سے یوکرین بھیجے جاتے ہیں, ان میں سے ادھکانش ہتھیار ودھونسکاری گٹوں کے ہی ہاتھ لگ جاتے ہیں, جن کا وہ درپیوگ کرنے لگتے ہیں. روس کا کہنا ہے کہ سہایتا کے نام پر بھیجے جانے والے ہتھیار اب کھیتر کی استھرتا کے لیے گمبھیر خطرہ بن گئے ہیں. برٹن کی مہارانی الیزابیتھ دوتیہ کے انتم سنسکار پر بہت ادھک دھن خرچ ہونے کی امید ہے. ورتمان سمے میں برٹن اپنے اتہاس کے سب سے گمبھیر آرتھک سنکٹ سے گزر رہا ہے. ایسے میں وہاں کی مہارانی کے انتم سنسکار میں اربوں روپے خرچ ہونے کی بات کہی جا رہی ہے. سنچار مادھیموں کے انوسار بری آرتھک استھتی کے کارن برٹن میں مہنگائی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. پچھلے 37 ورشوں کے دوران برٹن کی مدرا اس سمے اپنے سب سے نچلے استر پر پہنچ گئی ہے. برٹن کی مہارانی کے انتم سنسکار کی تیاریاں آرمبھ ہو چکی ہیں. 19 सितंबर को शाही परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। अंतिम संस्कार से जुड़ी परंपराएं अगले 12 दिनों तक जारी रहेंगी। उल्लेखनीय है कि 8 सितंबर को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का देहांत हो गया था। 96 साल की आयु में उन्होंने बालमोराल कैसल में अंतिम सांस ली। अर्दोगान का कहना है कि पश्चिम ने दाइश से मुकाबले में गंभीरता नहीं दिखाई है। दाइश के विरुद्ध पश्चिम के क्रियाकलापों की तुर्की के राष्ट्रपति ने कड़ी आलोचना की है। रजब तैयब अर्दोगान का कहना है कि आतंकवादी गुट दाइश के विरुद्ध संघर्ष में पश्चिम की कार्रवाइयां बिल्कुल भी गंभीर नहीं रही हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि दाइश के विरुद्ध संघर्ष में आज तक पश्चिम ने कोई भी उल्लेखनीय कार्रवाई नहीं की, जबकि उसको ऐसा जरूर करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस बारे में अब तक पश्चिम ने केवल मौखिक युद्ध किया है, व्यावहारिक युद्ध नहीं किया। तुर्की के राष्ट्रपति ने यह दावा किया कि इस आतंकी संगठन के खिलाफ केवल हमारे देश ने ही गंभीर कार्रवाई की है। उल्लेखनीय है कि इराक और सीरिया के कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद आतंकवादी गुट दाइश ने सन 2014 में अपनी तथाकथित इस्लामी सरकार के गठन की घोषणा कर डाली थी। इस दौरान उसने बहुत जघन्य अपराध अंजाम दिए। बाद में जनरल कासिम सुलेमानी ने इराक और सीरिया की सरकारों और जनता के सहयोग से दाइश के विरुद्ध अभियान आरंभ किया। इस अभियान में उन्होंने इस आतंकी गुट को परास्त कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने इराक और सीरिया से आतंकी गुट दाइश का बोरिया बिस्तरा बांध दिया। सीरिया का कहना है कि वो भारी नुकसान उठाकर आतंकवादियों के विरुद्ध अकेले संघर्ष कर रहा है। सीरिया के अनुसार ये लड़ाई वो पूरे विश्व के नेतृत्व में आतंकवादियों से लड़ रहा है। ये बात सीरिया के विदेश मंत्री ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही है। फैसल मिगदाद का कहना था कि हमारा मुकाबला अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से है, जिसमें हमको बहुत बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। मिगदाद ने कहा कि आतंकवाद से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों के बावजूद न तो सीरिया की सहायता की जा रही है और न ही वहां पर आतंकवाद का दंश झेल रहे लोगों के लिए कोई मदद की जा रही है। वे कहते हैं कि विडंबना तो यह है कि इस समय पूरे सीरियन राष्ट्र को आर्थिक परिवेष्टन में ले लिया गया है। भारत की कांग्रेस पार्टी पूरे देश में भारत जोड़ो पदयात्रा निकाल रही है। ये यात्रा 3,570 किलोमीटर लंबी है। महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण और नफरती राजनीति के खिलाफ कांग्रेस की अब तक की ये सबसे लंबी पदयात्रा बताई जा रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार बढ़ रही है। इस बीच जैसे जैसे राहुल गांधी के कदम आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें जनता का समर्थन मिलता जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम देश से नफरत खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है। राहुल गांधी ने कहा कि सभी की अपनी राय होती है, लेकिन हम नफरत भरी विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकते। इसी के साथ विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये प्रसारण आप रेडियो तहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। کیا حالات سے مجبور ہو کر امریکہ اور پاکستان ایک بار پھر قریب آ رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب کھوجنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی روش زیدی۔
بائیڈن پرشاسن نے پاکستانی سینا کو F-16 لڑاکو ویمان بیچنے پر سہمتی جتا دی ہے۔ امریکی رکشا منترالے پینٹاگون کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہوئے ایک سمجھوتے کے تحت پاکستانی سینا کو $450 ملین کے F-16 لڑاکو ویمان بیچے جائیں گے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان امریکہ سے F-16 لڑاکو ویمان خرید رہا ہے۔ 1980 کے دشک سے پاکستان امریکہ سے یہ لڑاکو ویمان خریدتا رہا ہے، لیکن اسلام آباد کو F-16 کی آخری ڈیلیوری 2010 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے افغانستان اور آتنکواد جیسے مدوں کو لے کر دونوں دیشوں کے رشتوں میں کڑواہٹ بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ پورو پاکستانی پردھان منتری عمران خان کے دورے میں اسلام آباد نے ماسکو کے ساتھ اپنی نکٹتا بڑھانی شروع کر دی۔ دوسری اور امریکہ کا جھکاؤ بھارت کی اور بڑھتا چلا گیا، لیکن افغانستان میں طالبان کی واپسی اور یوکرین یدھ نے شیتری اور انتراشٹری سمیکرنوں کو بدل کر رکھ دیا۔ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد امریکہ اور یورپی دیشوں نے بھارت پر کافی دباؤ بنایا کہ وہ روس سے تیل خریدنا بند کر دے، لیکن نئی دلی نے ایسا نہیں کیا۔ بھارت نے اپنے آرتھک اور سامرک ہتوں کے بیچ ایک سنتولن بنانے کی کوشش کی، لیکن پشچمی دیشوں کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ادھر طالبان کو نینترن میں رکھنے اور افغانستان میں سین آپریشنز کے لیے واشنگٹن کو اسلام آباد کی ضرورت تھی، اور ساتھ ہی اسے روس کی اور جھکنے سے روکنا تھا۔ ان سمیکرنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر کار بائیڈن پرشاسن نے اسلام آباد کو F-16 ویمانوں کے بیچنے پر سہمتی جتا دی۔ بائیڈن پرشاسن کے اس فیصلے سے پتا چلتا ہے کہ واشنگٹن ایک بار پھر اسلام آباد کو لے کر اپنی نیتی میں بدلاؤ کر رہا ہے، اور اب اسے طالبان یا چرمپنتی گٹوں کے پاکستان کے سمرتھن سے پرہیز نہیں ہے۔ حالانکہ 2001 کے بعد سے لگ بھگ 2010 تک تتھا کتھت آتنکواد کے خلاف لڑائی میں سہیوگ کے بدلے امریکہ نے پاکستان کو بڑے پیمانے پر آرتھک اور سامرک سہایتا پردان کی تھی، لیکن اب جبکہ پاکستان نے کابل میں طالبان کی واپسی اور امریکی سینکوں کے اس دیش سے نکلنے کا کھل کر سمرتھن کیا تھا، اس کے باوجود واشنگٹن نے ایک بار پھر پاکستان کی اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ پچھلے سال اگست میں افغانستان سے نکلنے کے بعد امریکہ کو یہ امید تھی کہ وہ پاکستان میں اپنے کچھ سین اڈے استھاپت کر لے گا، لیکن عمران خان سرکار نے اسے اس کی انومتی نہیں دی۔ لیکن اسلام آباد میں سطح بدلنے کے بعد ایسا انمان لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ورتمان سرکار نے طالبان کے خلاف سہیوگ کے لیے امریکہ کے ساتھ ساٹھ گانٹھ کر لی ہے، جس کا انعام اسے F-16 کے روپ میں دیا جا رہا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کاریکرم راجنیتک چرچا۔
مہارانی ایلیزابیتھ کے بعد برٹین کے نئے کنگ کے سامنے موجود چنوتیوں کا جائزہ لے رہے ہیں قائم رضوی۔
برٹین کی مہارانی ایلیزابیتھ کا قریب 7 دشک لمبے شاسن کے بعد 96 سال کی آیو میں ندھن ہو گیا۔ ان کے ندھن کے ترنت بعد برٹین کی راجگدی ان کے اتراادھیکاری اور ویلز کے پور پرنس چارلز کو مل گئی ہے۔ اس پرکار اب انہیں کنگ چارلز ترتیہ کے روپ میں جانا جائے گا۔ مہارانی ایلیزابیتھ نے کہا تھا کہ وہ 95 سال کی عمر میں راج کاج شاہی پریوار کے بیچ بانٹ دیں گی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور راجنیتی سے بھی سنیاس نہیں لیا۔ ان کا جنم 21 اپریل 1926 کو برکلے میں ہوا تھا۔ ایلیزابیتھ اس وقت کے برٹین کے راجہ جارج پنچم کے دوسرے بیٹے ڈیوک آف یارک البرٹ کی بڑی بیٹی تھی۔ اپنے پتا کے ندھن کے بعد 6 فروری 1952 کو وہ برٹن کی مہارانی بنی تھیں۔ وہ سب سے لمبے وقت تک برٹن پر راج کرنے والی مہارانی بنی۔ ان کے بیٹے چارلز اب ان کی جگہ کنگ بن گئے ہیں۔ نئے سمراٹ کے روپ میں ان کے سامنے کئی پرکار کی چنوتیاں ہوں گی۔ حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ برٹن میں یہ پد صرف ماند ہے، لیکن اس کی شکتیوں پر ایک نظر ڈالنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ برٹش سامراج کے پاس اب بھی کافی شکتیاں ہیں۔ کنگ یدھ کی گھوشنا کر سکتا ہے، سنسد کو بھنگ کر سکتا ہے، پردھان منتری کو برخاست کر سکتا ہے، اور خود پردھان منتری پد کے لیے کسی ویکتی کو نیوکت بھی کر سکتا ہے۔ اس کے پاس اتنی ادھک شکتیاں ہیں کہ اگر یہی شکتیاں کسی دوسرے دیش کے راجا کے پاس ہوتی تو برٹش میڈیا اسے پکشپات اور اس دیش کو الوکتانترک راشٹر بتاتے نہیں تھکتا۔ یہاں تک کہ کناڈا اور آسٹریلیا جیسے کامن ویلتھ دیشوں میں بھی الیزابیتھ کو کچھ اسی طرح کے ادھیکار حاصل تھے۔ حالانکہ ان دیشوں کی جنتا کے ویاپک ورودھ کے چلتے ان میں کچھ کٹوتیاں کر دی گئیں۔ مہارانی الیزابیتھ کے بعد پرنس چارلز کی تاج پوشی ایسی استھتی میں کی جائے گی کہ خود برٹن میں اس سلطنت کو سماپت کرنے کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ جب دیش میں جنتا دوارا چنے گئے جنتا کے پرتنیدھی موجود ہیں تو شاہی پریوار کے رکھ رکھاؤ اور ان کی دیکھ بھال پر کروڑوں ڈالر کیوں خرچ کیے جائیں۔ دوسرے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاہی ویوستھا کا جاری رہنا واستو میں ان اتیاچاروں کا سمرتھن کرنا ہے جو شاہی پریوار نے وگت میں عام لوگوں پر کیے تھے۔ پرنس چارلز جو اب کنگ چارلز بن چکے ہیں برٹن کی پرمپراگت نیتیوں سے کچھ ہٹ کر درشٹیکون رکھتے ہیں۔ 70 ورشیہ چارلز درشٹیکون اور سپنوں نامک کتاب میں رابرٹ جابسن لکھتے ہیں کہ چارلز یورپی دیشوں کی اسلام ورودھی نیتیوں کے ورودھی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اس سے مانواधिकारों کا ہنن ہوتا ہے۔ اس پرکار وہ برٹن کی لڑاؤ اور ہتھیار بیچو نیتی کا بھی سمرتھن نہیں کرتے۔ انہوں نے 2003 میں عراق پر امریکہ اور اس کے سہیوگی دیشوں کے حملے کی بھی کڑی آلوچنا کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پردھان منتری ٹونی بلیئر کو عراق میں ساموہک وناش کے ہتھیاروں کے دعوے کے بارے میں اور اس دیش پر حملے سے پہلے ادھک جانچ کرنی چاہیے تھی۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس نے کشمیریوں کے ادھیکاروں کی پراپتی تک آندولن جاری رکھنے پر بل دیا ہے۔ بیورا دے رہے ہیں شری نگر سے سپت حسن۔
بھارت پرشاست راجیہ جموں کشمیر کے سب سے بڑے مین سٹریم دل نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کو جو حقوق ہمارے چھینے گئے ہیں ان کی واپسی تک وہ اپنا ابھیان جاری رکھیں گے۔ سری نگر میں ایک سماروہ کے بعد پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے مہا سچیو شیخ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ نئی دہلی نے جو کچھ بھی کیا وہ آئینی نہیں ہے اور ہم اپنا ابھیان جاری رکھیں گے۔ انہوں نے لوگوں سے بھی ایک جٹ ہونے کا آہوان کیا۔ اس اوسر پر انہوں نے پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے کہا،
یہ ایک راستہ تشدد کا رکھیں گے، ایک راستہ امن کا رکھیں گے، یہ بلتا نہیں ہے، یہ عوام ایک ہے، ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، جین ہو، بودھ ہو، یا ہریجن ہو، یا سکھ ہو، یہ قوم ایک ہے، ایک ہندوستان ہے، اس میں دو معیار نہیں قائم کیے جا سکتے۔
اس بیچ جموں کشمیر میں ہنسا گھٹناؤں کا کرم بھی جاری ہے جس میں ایک کلکاوادی چھاپہ مار کے ہتات ہونے کی سوچنا ہے۔ دوسری طرف جموں کشمیر کے یو ٹی پرشاسن نے کہا ہے کہ 5 اگست کے بعد جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی ہوئی ہے اور ہم اس کے لیے ہر سمبھو پریاسوں میں جٹے ہوئے ہیں۔ ایل جی نے ایک سماروہ کو سمبوجھت کرتے ہوئے کہا کہ اب لوگ آزاد ہیں، وہ اپنا نرنے لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو بھارتیہ پردھان منتری نے دعوے کیے ہیں وہ سب برابر ہو رہے ہیں اور جو بھی انہوں نے آشواسن دیا ہے اسے ہر سمبھو برابر کیا جائے گا۔
مجھے لگتا ہے کہ زمانہ بیت گیا، آج آپ نے دیکھا کس طرح سے نوجوان یہاں اتساہ میں ہیں۔
سپت محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا سماپت ہوئی۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، कार्यक्रम आपने सुना राजनीतिक चर्चा। कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस बारे में आप अपने विचार हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। और अब पेश है आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम पत्र संसार।
पत्र संसार।
दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपने भैया रविश और दीदी
मरियम मेहर दादी का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, हमें आशा है कि आप जहां कहीं भी होंगे सकुशल होंगे और अपना मन पसंद कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे।
जी दोस्तों, और आपके वहां का मौसम का हाल क्या है, इसलिए कि मैं आपका भैया रविश जो है वो मौसम विभाग से भी उसका संबंध है, तो इसलिए हमें बताते रहा कीजिए कि अपने हाल के साथ साथ आपके शहर गांव आपके राज्य का क्या इस वक्त वातावरण है, क्या माहौल है, हर तरीके का जो भी है खबर देते रहा कीजिए, इसलिए कि हम लोग खबर भी देते हैं और आपके आप हमारी खबरों पर जो है अपने कमेंट्स भी करते हैं, तो इससे और अच्छा महसूस होता है।
हाँ, तो अभी आज भी हम ईमेल से शुरू कर रहे हैं और ये ईमेल है आनंद मोहन बाइन का। लिखते हैं कि तेहरान के हर कार्यक्रम काफ़ी अच्छे लगते हैं। आज के समाचार में यमन के साथ अमेरिका का गलत हरकत और पाकिस्तान और भारत के मित्रता के सूत्रधार स्नेहा विश्वास। राजनीतिक चर्चा रेडियो तेहरान का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। गजा पट्टी पर भयंकर हमला, तालिबान ईरान संबंध, आपके हर रिपोर्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं। पत्र संसार दीदी और भाई अहमद अब्बास ने प्रस्तुत किया, मेरा पत्र पढ़ा गया, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। काश इसमें और श्रोता के पत्र शामिल होते। संस्कृति से जुड़ी खबरें हमेशा कुछ नया जानने का मौका देती है। चार मकबरे पर चर्चा हुई, लाल गेहूं रंग से ढका गया है, ये मकबरा 7000 ईसा पूर्व का है। सुंदर जानकारी के लिए धन्यवाद।
ये वैसे आनंद मोहन मान जी जो है जी। वो ये एक तरफ तो कह रहे हैं कि दूसरे जो श्रोताओं के पत्र जो है वो शामिल किया जाए, अगर हम दूसरे श्रोताओं के पत्र शामिल करेंगे तो इनका नहीं करेंगे और फिर ये जो है हमसे शिकायत करेंगे कि भाई आप हमारा पत्र क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं। वैसे ठीक है, अब जो है लगातार हम दूसरों के पत्र शामिल करेंगे और आपका पत्र कुछ दिनों तक शामिल नहीं करेंगे। वैसे ही मैं आपसे मजाक कर रहा था, आपका पत्र जो है आपकी मोहब्बत इतनी अच्छी है, आपका प्रेम हमेशा लिखते हैं आप, हमको हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं, तो इसके लिए आपका पत्र जो है वो हम हमेशा शामिल करते हैं।
जी, ग्राम महदेया मठ जिला मुजफ्फरपुर से रजनीश कुमार लिखते हैं, आजकल आपके प्रसारण हम नियमित पूर्वक सुन रहे हैं और रेडियो तेहरान पर 25 मीटर बैंड यानी 11,860 किलोहर्ट्ज पर प्रसारण भी साफ सुनाई दे रहे हैं। शुक्रवार को विश्व समाचार और राजनीतिक चर्चा के साथ साथ पत्र संसार विज्ञान के डगर का कार्यक्रम सुना, जिसमें पत्र संसार के तहत भिलाई छत्तीसगढ़ के आनंद मोहन जी और गोराडी भागलपुर के हेमंत कुमार जी के द्वारा पत्रों में लिखे गए विचार को सुना और साथ ही साथ विज्ञान की डगर के तहत विज्ञान के क्षेत्र में ईरान में हो रही तरक्की और लिस्मेनियासिस रोग क्या है और इसके होने का कारण क्या है, इस समस्या के बारे में चर्चा की गई थी जो मुझे काफ़ी ज्ञानवर्धक लगी। इसके लिए आप सभी को कोटिश धन्यवाद।
हम भी आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप सदैव जो है हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं और इसको भी हम इस प्रयास को भी जारी रखेंगे कि आपके लिए और अच्छी अच्छी पेशकश लेकर आए, अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर आए ताकि आप हमारी और ज़्यादा तारीफ करें। तो दोस्तों, अब हम कार्यक्रम के उस पड़ाव में आ गए हैं जहां पर आपको संस्कृति से जुड़ी हुई खबरें और उन खबरों में कभी आपको खाने को मिलता है और कभी घूमने को मिलता है। वैसे दोनों चीज़ जो है वो बहुत सही है, खाइए और घूम कर जो है टहल कर उसको पचाइए। तो चलते हैं दीदी के पास, देखते हैं कि आज वो खिलाएंगी या टहलाएंगी?
जी आज तो हम टहलाएंगे, नहीं तो वैसे आपको खाने की पड़ी रहती है।
बिल्कुल बिल्कुल
जी। ईरान के संग्रहालय अथॉरिटी ने ब्रिटेन को ऐतिहासिक पेंटिंग की तस्करी की पुष्टि की है। ईरानी सांस्कृतिक विरासत मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रिपोर्टों की पुष्टि की कि मुजफ्फरुद्दीन शाह काजार का एक चित्र तेहरान के गुलिस्तान पैलेस से निकाला गया था और बाद में तस्करी कर विदेशों में बेचा गया था। इससे पहले ब्रिटेन में क्रिस्टी की नीलामी की तस्वीरें सामने आई जिसमें तेहरान के गुलिस्तान पैलेस में बिक्री के लिए चित्र और कला के ऐतिहासिक कामों के खाली जगह की पेशकश की गई, जिससे ईरानी चित्रों पर सवाल उठे। महल के प्रभारी अधिकारी ने काजार शासन की एक उत्कृष्ट कृति जो राजवंश के राजाओं के सीट के रूप में कार्य करती थी पहले इस तरह के चित्र के अस्तित्व के ज्ञान से इनकार किया था और कहा था कि ये नकली था। अब गुलिस्तान पैलेस में पंजीकृत दस्तावेजों और संपत्तियों की जांच के बाद मंत्रालय के संग्रहालयों के महानिदेशक मुर्तजा अदीबजादे ने पुष्टि की कि पेंटिंग मौजूद थी और 1938 से 1982 के बीच देश से बाहर तस्करी की गई थी। उन्होंने कहा कि क्रिस्टी के नीलामी विशेषज्ञों को चाहिए कि नीलामी आयोजित करने से पहले ईरान से पेंटिंग के बारे में पूछताछ करनी चाहिए थी। पेंटिंग की घर वापसी सुनिश्चित करने का वचन देते हुए अधिकारी ने कहा कि अब जो महत्वपूर्ण है वो काम का अवैध निकास है। प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार कमाल उल मुल्क द्वारा हस्ताक्षरित चित्र 2000 में लगभग 22 साल पहले यूके में क्रिस्टी की नीलामी में 44,650 ब्रिटिश पाउंड में बेचा गया था।
वैसे दीदी एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि ये यूके ने
जी
जिसे कहते हैं ब्रिटेन
जी जी, जी
उसने
जी।
पूरी दुनिया से नहीं ईरान से बहुत सारी चोरी
करते
बहुत ज्यादा चोरी की है, भारत से बहुत ज्यादा चोरी की है। अगर इनके संग्रहालयों को तमाम
खुद है ही नहीं कुछ भी भाई
नहीं वही मैं कह रहा हूँ, अगर इनके संग्रहालयों से तमाम विदेशों के सामान को वापस लौटा दिया जाए जो दूसरे तो इनके संग्रहालयों में कुछ रह ही नहीं जाएगा, खाली पड़ा होगा, वहां कोई देखने वाला भी नहीं जाएगा। तो बहरहाल दोस्तों इस बात मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो है वो ऐसे चोरों से सचेत रहें, अपनी अपने सामान की सुरक्षा जो है स्वयं करें। तो दोस्तों आपको पता ही है कि हम अब क्या पेश करने वाले हैं। वैसे आप भी जल्दी जल्दी जो है वो हमारे वेबसाइट पे आया कीजिए, हमारे फेसबुक पेज पे आया कीजिए और हर खबर पे अपने कमेंट्स दीजिए ताकि हम उसको अपने इस कार्यक्रम में जो विशेष कार्यक्रम है और आपका मनपसंद कार्यक्रम है पत्र संसार उसमें शामिल कर सकें। तो चलते हैं दीदी के पास और देखते हैं कि आज किसने किसने किन किन खबरों पर कमेंट्स किया है।
जी, सीरिया के तेल की लूटपाट, अमरीकी सैनिकों का असली चेहरा सामने आ गया। इस पर दाऊद लिखते हैं कि अमरीका हेल, सीरिया में अपने कब्जे को समाप्त करने के लिए कॉलिंग की भाषा नहीं सुनेंगे बल्कि वे केवल रॉकेट की भाषा समझेंगे। मिसाइल और रॉकेट ही उन्हें पैक करके क्षेत्रों को छोड़ने पर मजबूर करेंगे।
वैसे दाऊद साहब आपके नाम से ही लग रहा है कि आप जो है डायरेक्ट हमले की बात कर रहे हैं और ज़रूर ऐसे ही हो रहा है। इस वक्त जो है वो इसराइल जैसी जो अवैध शासन है उसको इन तमाम प्रतिरोधक बलों द्वारा लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और यकीन जानिए विश्वास मानिए इस वक्त इसराइल जो है वो पूरी तरह डरा और सहमा है, ये पूरी दुनिया जानती है।
जी, ईरान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने की अहम चर्चा। इस पर होशियार लिखते हैं, पाकिस्तान के साथ अपने सांस्कृतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को सुधारने के लिए ईरान का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दायित्व है। मिस्टर जरदारी और मिस्टर अमीर अब्दुल्लायान वास्तव में सही रास्ते पर हैं, उनकी सफलता की कामना करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दूसरे इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वहाँ पर बाढ़ आई हुई है, काफ़ी लोग परेशान हैं, उस उनके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत टूटी हुई है। तो इस दरमियान भी ईरान ने काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है यहाँ से सहायता भेजी है और लगातार यहाँ से यहाँ की जनता यानी सरकार के साथ साथ जनता भी लगातार वहाँ के जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता कर रही है। आप लोग भी अगर जितना हो सके उनकी सहायता कीजिए, आगे आइए, उनके लिए जो कुछ कर सकते हो कीजिए, इसलिए कि वो मानवता इस वक्त जो है पाकिस्तान की जनता इस वक्त काफ़ी मुसीबतों में है।
अमेरिका परमाणु समझौते से संबंधित ईरान की चिंताओं का सही जवाब दे चीन। इस पर मनोचर लिखते हैं, ईरान को एक बात पर विचार करना चाहिए। ईरान के साथ अमेरिका की मुख्य समस्या देश में स्वतंत्र इस्लामी गणराज्य सरकार है। भले ही ईरान अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करता है, फिर भी इस समस्या के कारण दोनों देशों के बीच स्थायी अविश्वास बना रहेगा, खासकर जब अमरीकी राजनेता ज़ायनवादियों से सीधे आदेश ले रहे हैं। इसलिए ईरान को भी इस पर ध्यान देना चाहिए।
देखिए, ईरान अपने हिसाब से पूरा ध्यान दे ही रहा है, और जहां तक समझौते की बात है, इस वक्त खुद अमरीकन्स यानी खुद अमरीका को और यूरोपीय देशों को इस समझौते की ज़्यादा ज़रूरत है। ईरान पहले भी मजबूती से इनका मुकाबला कर रहा था, आज भी मजबूती से इनका मुकाबला कर रहा है, और आगे भी उतनी ही मजबूती से इनका मुकाबला करता रहेगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं दीदी के पास और देखते हैं कि किस प्रिय श्रोता ने हमें अपने विचार भेजे हैं और उनके विचारों को सुनते हैं। क्या कहती हैं दीदी
जी? भैया, ये हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं पावेल जोर, तो इनके विचार हम सुनते हैं। पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इनकी जो दृष्टि थी जो धीरे धीरे ख़त्म हो गई है, और फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हमसे संपर्क बना के ये बात कही है।
हम उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनोकामना करते हैं, और अब मैं अपने तमाम सुनने वालों से भी ये अपील करते हैं कि पावेल जी के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप भी दुआ करें।
जी, मैं दोबारा से पावेल, सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ जी आपका, आपने मेरी बात सुनी, इट्स रियली थैंक टू यू मैम। मरियम आई थिंक आपने नाम बताया अपना, अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो इट्स रियली सॉरी। तो बिल्कुल जी, आई एम रेडी, बिकॉज मैं जहाँ तक प्रोग्राम्स की बात रही, जब मेरा विज़न था ना, तकरीबन जब मैं 28 का था, आज से 10 साल पहले की बात करूँ, तो मेरे फादर साहब ही इज़ आर रियली वेरी इंटरेस्टेड इन रेडियो, एंड मैं उनके साथ शॉर्ट वेव पर आपकी सर्विस को सुनता था। मेरे याद है थोड़ा थोड़ा, जब मैं छोटा सा था, आई थिंक वो रेडियो तेहरान ही था मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत हुआ तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं जब 10 साल पहले की बात करूँ तब तो मैं पक्का श्योर हूँ, उस टाइम इतना नहीं था मोबाइल वगैरह में, एप्लीकेशन वगैरह कुछ नहीं था। तो आफ्टर विजन लॉस 1-1.5 साल मैं ऐसे ही बैठा रहा कि यार अब क्या होगा क्या नहीं होगा, बस एक ट्रैक मिल गया कि आपको भाई इस ट्रैक पे चलना है, आप ये सब कुछ कर सकते हो, आप मोबाइल भी यूज़ कर सकते हो, कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि मेरी जॉब भी कंप्यूटर की है, अकाउंट्स की। तो इसके बाद भी मैं थोड़ा थोड़ा रेडियो सुनता था और शॉर्ट वेव पर थोड़ी थोड़ी सर्विस कभी कभी आपकी हमारा रेडियो कैच करता था, तो ट्रैफिक के आपको पता है, चलो इस डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। तो उसके बाद मैंने अपने एंड से जब मैं मोबाइल यूज़ करना सीख गया, आज से मेरे ख्याल 2-2.5 साल पहले, तो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर 17 के लास्ट में मैंने अपने एंड से ट्राई किया, मैंने कहा यार रेडियो तेहरान, तो रेडियो तेहरान को जब मैंने सर्च किया गूगल पर, तो गूगल पर वहाँ पर आया पार्स टुडे हिंदी, तो वहाँ से मिला एप्लीकेशन का लिंक कि प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, तो मैंने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। तो तब से मैं बीच बीच में सुन रहा हूँ जब भी मेरा टाइम लगता है। हाँ, मैं ये आपने जो प्रोग्राम बताया मैंने इसको भी सुना है, तो जी मैं बहुत खुश होऊंगा। बेसिकली मेरा मोटिव और मेरा अभी यही है कि जो ब्लाइंड्स अभी भी इस इन ऑल अराउंड वर्ल्ड में, अगर मैं आपको बताऊँ कि तकरीबन आप ऐसा लगाओ कि 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा ब्लाइंड्स इन इंडिया में हैं, 35% जो पार्ट है ब्लाइंड्स का पूरी दुनिया का वो अकेले इंडिया में ही है। तो इंडिया में ही बहुत आपके लिसनर्स हैं, आउट ऑफ इंडिया में भी बहुत पर्सन्स बैठे हैं जिनको नहीं पता कि इस टेक्नोलॉजी का, जैसे देखिए आप यहाँ पर हैं, आपको आई थिंक अगर इस चीज़ का पता होगा तो ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ को पहुंचाना चाहता हूं सभी तक कि भाई अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो इट्स नॉट एंड, दुनिया ख़त्म नहीं है, आगे बहुत कुछ है, ज़िंदगी के साथ दुनिया है। अगर हमारी ज़िंदगी ख़त्म तो दुनिया ख़त्म होती है, अदरवाइज एवरीथिंग। तो बाकी थैंक यू जी, आई एम रेडी, आप जब भी मेरे को कहेंगे जैसे भी होगा बताएं आप मेरे को, मैं तैयार हूँ। तो बाकी थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बात सुनी अगेन, और थैंक यू वेरी मच।
तो दोस्तों अब हमारे पास बिल्कुल समय नहीं बचा है, तो जल्दी से दीदी हम अपने श्रोताओं से अपने दोस्तों से खुदाहाफिजी करना चाहते हैं, तो अपने भैया रविश और दीदी मरियम को इजाजत दीजिए, खुदाहाफिज।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों पत्र संसार अभी आपने सुना, अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, hindi@wsirib.ir। और सभा के समापन से पहले अब पेश है इस सभा का अंतिम कार्यक्रम विज्ञान की डगर।
विज्ञान की डगर।
दोस्तों कार्यक्रम विज्ञान की डगर की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हम ईरान और दुनिया में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली प्रगतियों के विषय पर चर्चा करेंगे। मैं हूं अहमद अब्बास, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। ईरान के पवित्र नगर मशहद के फिरदौसी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हानिकारक प्रदूषणों को कम करने और डीजल इंजनों के प्रदर्शन में सुधार पर ईंधन के रूप में धातु ऑक्साइड नैनो कणों का उपयोग करने के प्रभाव की समीक्षा की है। इस परियोजना के शोधकर्ताओं के अनुसार इस परियोजना का उद्देश्य इंजन की दक्षता और ईंधन की खपत पर नकारात्मक प्रभाव डाले बिना डीजल इंजन से पर्यावरण प्रदूषणों के उत्सर्जन को कम करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस शोध में प्रयुक्त प्रौद्योगिकियों में से एक ईंधन योजक के रूप में नैनो कणों का उपयोग किया गया है। इस उद्देश्य के लिए मैग्नीज ऑक्साइड और कोबाल्ट ऑक्साइड के दो नैनो कणों का उपयोग किया गया है। इस शोधकर्ता के अनुसार इस अध्ययन में डीजल इंजन में दहन से पहले और दहन के बाद दो विधियों के एक साथ प्रयोग से प्रदूषणों के उत्सर्जन और इंजन के प्रदर्शन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है। इस परियोजना के शोधकर्ता के अनुसार जनरेटर और एनओएक्स को और एचसी प्रदूषणों 1, 2 और 3 से जुड़े चार सिलेंडर डीजल इंजन के साथ साथ ब्रेकिंग ईंधन की विशिष्ट खपत सहित इंजन की क्षमता और उसके प्रदर्शन के मापदंडों का परीक्षण किया गया और ब्रेकिंग थर्मल दक्षता मापी गई। शोधकर्ताओं के अनुसार इस शोध कार्य की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि इंजन के क्रियाकलाप और प्रदर्शन के सापेक्ष सुधार के साथ साथ प्रदूषण उत्सर्जन में कमी रही है। वास्तव में परिणाम बताते हैं कि इन नैनो एडिक्टिव्स का उपयोग करके एनओएक्स और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण क्रमशः अधिकतम 40% और 25% कम हो गए हैं और इसके अलावा ईंधन की खपत में अधिकतम 4% की कमी हासिल हुई है। चूंकि इस शोध में अध्ययन की गई प्रणाली एक डीजल इंजन के बारे में थी, इसलिए मोटर वाहन उद्योग इस शोध का प्रत्यक्ष लक्ष्य है और इस परियोजना के परिणाम डीजल वाहनों के निकास से पर्यावरण में प्रदूषण उत्सर्जन को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये शोध कार्य 2018 फ्यूल नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि गाड़ियों के ईंधन से कौन सा प्रदूषण फैलता है। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड या सीसा का प्रयोग किया जाता है। धुएं के साथ विमुक्त ये लेड सबसे अविषालु धातु प्रदूषक होते हैं। लेड के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं। PUCC क्या होता है? इस तरह के प्रदूषण के लिए पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो मानक तय किए गए हैं उनके मुताबिक ही आपकी गाड़ी का धुआं प्रदूषण फैला रहा है। इस बात की पुष्टि करने के लिए टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट के बाद जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उसे PUC कहते हैं। वाहनों से वायु प्रदूषण कैसे होता है? पावर कारों और ट्रकों को जलाने की प्रक्रिया में गैसोलीन निकलती है जो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के विषैले गैसों के पदार्थ पैदा करती है और इससे वायु प्रदूषण में योगदान बढ़ता है। कारों और ट्रकों के तेल पाइप से वायुमंडल में सीधे जारी होने वाले उत्सर्जन वाहनों के प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत हैं। वाहनों से धुआं क्यों निकलता है? पेट्रोल वाहनों से वायु प्रदूषण के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड व कुछ भाग एल्डिहाइड के ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। वाहन से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन दहन क्रिया के पूर्ण न होने के कारण तथा हवा व ईंधन के उचित अनुपात न होने के कारण उत्सर्जित होते हैं। एक शोध के मुताबिक डीजल से ज्यादा पेट्रोल खतरनाक है। डीजल से चलने वाले वाहन में कार्बन मोनोऑक्साइड व बिना जला हाइड्रोकार्बन पेट्रोल की तुलना में कम उत्सर्जित होता है। डीजल वाहनों से नाइट्रोजन ऑक्साइड, धुआं, सूक्ष्म कण, एल्डिहाइड तथा गंधक का उत्सर्जन होता है। डीजल इंजन से निकलने वाले धुएं को काला, नीला व सफेद तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। काला धुआं ऑयल के जलने से निकलता है। सफेद धुआं अधजले ईंधन व ठंडे इंजन से निकलता है। काला धुआं ही अत्यधिक प्रदूषणकारी कण व गैसों का उत्सर्जन करता है। पेट्रोल वाहनों से वायु प्रदूषण के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड व कुछ भाग एल्डिहाइड के ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। वाहन से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन दहन क्रिया के पूर्ण न होने के कारण तथा हवा व ईंधन के उचित अनुपात न होने के कारण उत्सर्जित होते हैं। बाल रोग विशेषज्ञों का कहना है कि वाहनों में डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन व अन्य गैस वायु में मिलकर उसे प्रदूषित करती हैं। विषैले पदार्थ वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। इनसे बीमारी का खतरा बना रहता है। इलेक्ट्रोकॉर्टिकोग्राफी पहनने योग्य प्रणाली को मस्तिष्क की सतह से तंत्रिका संकेतों को रिकॉर्ड करने के लिए ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य के अनुसार इस शोध परियोजना के क्रियान्वयन के अंतर्गत एक इलेक्ट्रोकॉर्टिकोग्राम रिकॉर्डिंग प्रणाली को तंत्रिका तंत्र के साथ संवाद करने के लिए डिजाइन और बनाया गया था। इस तकनीक का उपयोग मस्तिष्क की बाह्य गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जा सकता है। तंत्रिका विज्ञान और कॉग्निटिव साइंस के क्षेत्र में अनुसंधान समूह जो किसी तरह क्लिनिकल ट्रायल और व्यवहारिक प्रयोग करते हैं इस प्रणाली के मुख्य उपयोगकर्ताओं में से हैं। इस शोधकर्ता के अनुसार इस शोध परियोजना के प्रारंभिक परिणाम प्रयोगशाला पशुओं पर प्रयोग करने में सफल रहे तथा व्यवस्था में परिवर्तन कर कॉग्निटिव साइंस अनुसंधान के क्षेत्रों में इसके प्रयोग के दायरे का विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के अनुसार इस परियोजना के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक आंतरिक प्रौद्योगिकी का विकास और मस्तिष्क की सतह से तंत्रिका संकेतों को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्टम के कुछ हिस्सों में इसका स्थानीयकरण है। इस शोधकर्ता के अनुसार तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम शरीर के विभिन्न भागों में मानव शरीर के सबसे जटिल भागों में से एक है और इसलिए तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग सबसे कठिन उपचारों में से एक है। इसलिए तंत्रिका संकेतों की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने की प्रणाली तंत्रिका तंत्र को समझने में तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में शोधकर्ताओं को बहुत मदद करती है। नर्वस सिस्टम पर हमारे शरीर के कंट्रोल और विभिन्न आंतरिक अंगों के परस्पर कम्युनिकेशन का दारोमदार होता है। इसलिए शरीर की कार्य प्रणाली को दुरुस्त रखने के लिए इसका मजबूत होना जरूरी है। कई बार इंजरी, बीमारी या शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी की वजह से ये कमजोर या क्षतिग्रस्त हो जाता है। ऐसे में दवाओं के साथ साथ इसे सपोर्ट देने वाला फूड लेना भी जरूरी है। पहली बार एक प्रयोग में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ता एक्स्ट्रासेल्युलर मौत की दर को मापने में सक्षम हुए। पहली बार वे ट्रिगर वेव नामक कोशिका के आत्मविनाश की प्रक्रिया का निर्माण करते हुए एक कोशिका के भीतर मृत्यु की दर को मापने में सक्षम हुए। इस अध्ययन के परिणामों के अनुसार मौत लगभग 30 माइक्रोमीटर प्रति मिनट की गति से चलती है। प्रोफेसर के अनुसार सेलुलर सेटिंग्स में हमले की लहर को दोहराव वाली पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने एक मेंढक के अंडे से लिए गए साइटोप्लाज्म यानी कोशिका के अंदर के द्रव का इस्तेमाल किया। इसके बाद तरल को कुछ मिलीमीटर लंबे टेफ्लॉन ट्यूबों में रखा गया। इस बिंदु पर कोशिका में एपोप्टोसिस या मृत्यु संकेत प्रक्रिया शुरू हुई। एपोप्टोसिस को सक्रिय करने की प्रक्रिया के साथ संयुक्त फ्लोरोसेंट तकनीकों का उपयोग करके शोधकर्ता ये देखने में सक्षम थे कि कोशिकाएं स्वयं को कैसे नष्ट करती हैं। ये प्रक्रिया पाइप के साथ चलती है। इस परियोजना के शोधकर्ताओं के अनुसार आइडियल के रूप में ऐसे प्रयोग वास्तविक सेल में किए जाने चाहिए, लेकिन इसमें एक समस्या है क्योंकि अधिकांश कोशिकाएं इतनी छोटी हैं कि आक्रमणकारी तरंगों को भेद नहीं पाती। शोधकर्ताओं ने एक फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का उपयोग करके मेंढक के अंडों का अध्ययन किया। अंडों के मैलेपन या खराब होने के कारण ये अध्ययन अधिक कठिन था। हालांकि जैसे जैसे हमलावर लहर आगे बढ़ी, अंडे की सतह पर हल्के रंग की एक समान लहर उभरी। इस अध्ययन से पता चला कि एक सेल के अंदर मौत की प्रक्रिया एक स्टेडियम में कई पंखे लगाने और एक लहर बनाने के समान है। इसी तरह की आक्रामक तरंगे तंत्रिका आवेगों में और बड़े पैमाने पर तब देखी जाती हैं जब प्रकृति में आग फैलती है। शोधकर्ताओं के अनुसार हमले की लहर विद्युत संकेतों को तंत्रिका कोशिका के फिलामेंट वाले भाग में और कैल्शियम तरंगों को कोशिकाओं के माध्यम से प्रचारित करने की अनुमति देती है। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रमों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है partstoday.com/hi। कार्यक्रमों पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098-9035-0659 2। तो इसी के साथ अब हम आपसे अनुमति चाहते हैं। खुदा हाफिज़।